हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 50 राजमहल का एक अतिथि कक्ष। वीरेश रक्षक दल के अपने चारों दोस्तों के साथ वहां पर बैठा हुआ है और वहां पर कुल मिलाकर 5 लोग हैं। दरवाजे के बाहर 2 सिपाही खड़े हुए हैं जो कि हर दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। कुछ देर पहले सेविकाएं उसे कमरे में उन लोगों के लिए खाने पीने के अलग अलग तरह के व्यंजन और शरबत रखकर गई हैं, जिनमें से उन लोगों ने बस थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि वो लोग हमेशा ही एकदम नियमित खाना खाते हैं। लेकिन उन सब के बीच बैठा जयंत, जिसे कि खाने पीने का बहुत शौक है और वो ज्यादातर चीज का नहीं पता, वो महल के इतने ज्यादा स्वादिष्ट पकवान देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और वो जल्दी जल्दी सारी गलियों में से कुछ ना कुछ उठाकर खाने लगा। नीरज ने उसे रोकने के लिए गुस्से में आंखें भी दिखाएं और फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सबकी नज़रें बचाकर वो फिर से खाता रहा और बाकी बातचीत करने में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा। लेकिन उसके अलावा नीरज, वैभव और वीरेश आपस में बातें कर रहे हैं और उन सब के बीच एक लड़की लतिका भी है। उन लोगों ने वीरेश को जो कुछ भी बताया, वीरेश ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद थोड़ा सोचते हुए बोला, कौन सी नकारात्मक शक्ति? क्या ये वही शैतान है जिसके बारे में हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं? लेकिन अगर वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है और शैतान का अंश, तो फिर वो तुम लोगों के सामने क्यों नहीं आया? वैभव ने वीरेश की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो खुद तो आज तक किसी के भी सामने नहीं आया है और हमारा सामना उसके भेजे हुए गुलाम और काली शक्तियों से हुआ है, जो सब अलग अलग तरह के हैं, कोई प्रेत तो कोई पिशाच और कोई बुरी आत्मा। ये सब उसके कब्जे में हैं और उसका कहना भी मानते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वो अपनी कैद में रखता है, वो भी धीरे धीरे शैतान बन जाते हैं। वैभव की बात सुनकर वीरेश, नीरज और लतिका सभी सोचने लगे। अब जयंत भी खाना रोककर उन लोगों की तरफ ही ध्यान दे रहा था, लेकिन अब तक उसने आधे से ज्यादा खाना खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ देर के बाद जयंत ने फिर से एक थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो नीरज ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसके हाथों को बांध दिया, जिससे कि वो हाथ और आगे ना बढ़ा पाए, और उसने गुस्से में कहा, बस कर्जा मोटे, कितना खाएगा तू? अपने सामने बैठे हुए जयंत को समझाते हुए वीरेश ने उन लोगों से सवाल किया, हाँ जयंत, तुम्हें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को ही काबू में करना सीखना होगा। अगर तुम यही नहीं कर पाओगे तो सारी शक्तियों में महारत कैसे हासिल करोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम लोग इसे अपने साथ जंगल में लेकर ही क्यों गए थे? सीधा वहीं से यहाँ आ रहे हो ना तुम लोग? जयंत ने तुरंत ही मुंह बनाकर उन सब की तरफ देखते हुए जवाब दिया, तुम इस तरह से क्यों सुना रहे हो मुझे? और तुम्हें पता है, वैसे भी मैं काफी सारी चीजों में अच्छा हूँ, लेकिन बस ऐसी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन हमें वहाँ आश्रम में खाने को नहीं मिलती, तो बस मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। जयंत की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और वहाँ का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हो गया। इससे पहले वो लोग एकदम गंभीर होकर इस बारे में बात कर रहे थे और फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहां से वापस आश्रम के लिए निकल गए और जितना उन लोगों को समझ में आया था वो सब उन लोगों ने वीरेश को बता दिया और वीरेश भी फिर वापस अपने काम पर लग गया। और वसुंधरा के कमरे के बाहर खड़े होने से पहले उसने पूरे महल का एक चक्कर लगाया और वो छत पर भी जाना चाहता था, लेकिन कुछ सिपाहियों ने उसे रोक दिया कि बोलकर कि रात के वक्त छत पर सभी का जाना मना है, इसलिए वो भी नहीं जा सकता। अगर उसे जाना है तो कल सूरज ढलने से पहले ही उसे छत पर जाना होगा। ये बात सुनकर वीरेश का दिमाग ठनका और उसने अपने मन में कहा, अब भला राजमहल की छत पर जाने में ऐसा कौन सा खतरा है कि सबको ही छत पर जाना मना है? चलो, राजकुमारी को मन होता तो मैं मान सकता था, लेकिन मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे ये लोग? और ऊपर से इतना कड़ा पहरा बिठा दिया है यहाँ पर महाराज ने, जरूर कोई तो गड़बड़ है। इतना सोचते हुए वीरेश वापस वसुंधरा के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसका दिमाग अभी इन्हीं बातों में लगा हुआ था। वसुंधरा के कमरे के अंदर चंद्रिका एकदम खोई हुई सी बैठी हुई है और उसका ध्यान अभी भी उसे आदमी में अटका हुआ है जिसने जंगल में उसकी जान बचाई और उसकी इतनी मदद की। उसकी वो पीली चमकती हुई आंखें उसकी आंखों में जैसे बस गई हैं और उन आंखों के आगे जैसे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है।
चंद्रिका ने अब तक उस आदमी का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसकी एक बहुत ही प्यारी और मनमोहक तस्वीर बन गई है, जिसके बारे में सोचकर वो मुस्कुरा रही है। और उसके सामने बैठी हुई वसुंधरा बार बार उस जंगल के बारे में पूछ रही है कि वो वहां पर कहां गायब हो गई थी, और उसे नरभक्षी पेड़ के बारे में भी बता रही है, लेकिन चंद्रिका का ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है। वसुंधरा इस तरह रानी और उत्साह के साथ सारी बातें चंद्रिका को बता रही है। और तुम्हें पता है चंदा, वो पेड़ बहुत ही खतरनाक था। तुम्हें पता है उसकी जड़ें हमारे पैरों में लिपट गई थीं, और देखो हमारे पैरों में अब तक चोट लगी हुई है। अब तो पहले से काफी ठीक हो गई, लेकिन उसे वक्त तो काफी गहरे जख्म हो गए थे हमारे पैरों पर, और हम चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन तब वीरेश ने हमारी मदद की और हमें। इतना बोलते हुए वसुंधरा भी एकदम चुप हो गई। जैसे ही उसे उस लम्हे के बारे में याद आया जब वीरेश ने उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी गोद में ही उठा लिया था, और कितनी दूर तक वो उसे उसी तरह गोद में उठाए हुए चला था। कहानी जारी रहेगी। इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माय मिस्टीरियस हस्बैंड, माय बॉस इज माय सीक्रेट लवर, आवर अरेंज्ड लव, Caged in Devil's Love, Secret Billionaire.